अक्षित रंजन दोनों उस खंडर वाली जगह जाते हैं, पर सच में उस वक्त वहां कोई नहीं था। संध्या से बात करके ही देव अक्षु को वहां से लेकर चला जाता है, यहां तक कि कुछ न मिला। रंजन, यहां तो कोई है नहीं, और देखकर भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई आया ही नहीं। तभी अक्षित की नज़र वहीं ईंटों के पास पड़ी कुछ चीज़ पर जाता है। अक्षित ने उसे अपने हाथ में उठाया और उस जगह को देखकर बोला, था तो यहीं और चला भी गया जीजू, ये देखो टूटा हुआ सिम कार्ड। रंजन, इसका मतलब जो संध्या ने कहा था वही सच था, हम आएंगे और वो निकल गया यहाँ से, हमारा यहाँ आना भी वेस्ट ही हुआ। अक्षित वहीं घुटनों के बल गिरते हुए, तो क्या करूँ जीजू, अभी नहीं रहा जा रहा है, ना कुछ समझ आ रहा है, खुद को लाचार, कमज़ोर और मजबूर सा महसूस कर रहा हूँ। मेरा अक्षु मुझे सुपर हीरो कहता है, पर देखो आज उसका डैड उसका सुपर हीरो ना तो अपने अपने बेबी को बचा पा रहा है और ना ही उस तक पहुँच पा रहा है। आई एम सॉरी बेबी, रंजन अक्षित के कंधे पर हाथ रखकर उठो कहते खड़ा करता है और बोलता है, संभालो अक्षित, समझ सकता हूँ मैं क्या बीत रही है, पर ये वक्त कमज़ोर पड़ने का नहीं, मुसीबत का डटकर सामना करने का है, हम हार नहीं सकते हैं, चलो यहाँ से चलते हैं, हमें जल्द घर पहुँचना है, उस देव का फिर फ़ोन भी आएगा। अक्षित हाँ में सिर हिलाते हुए, हाँ चलिए, और दोनों वहाँ से भागते हुए निकल जाते हैं। रंजन गाड़ी में बैठ जाता है और अक्षित जैसे ही गाड़ी में बैठने लगा उसे कुछ अजीब सा लगता है और अक्षित इधर उधर देखने लगा और मन ही मन खुद से बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा अक्षु यही कहीं हो। रंजन, अक्षित क्या हुआ, चलो। अक्षित ने एक मिनट जीजू बोला और इधर उधर भागते हुए देखा। तभी रंजन ने अक्षित को आवाज़ दी, अरे यहाँ कोई नहीं है, आ जाओ, पहले ही टाइम वेस्ट कर चुके हैं, अब और नहीं। अक्षित ने अक्षु अक्षु चिल्लाते हुए अक्षु को आवाज़ दी। रंजन फिर अक्षित से कहता है, अक्षित चलो। अक्षित आकर गाड़ी में बैठता और बोलता है, पता नहीं जीजू ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अक्षु यही हो। रंजन गाड़ी स्टार्ट करते हुए, होता तो दिख जाता, हमने ये टूटा फूटा खंडहर ही, इसके आसपास की जगह भी छान मारी है, यहाँ कुछ नहीं है, और दोनों वहाँ से निकल गए। दोनों के जाते ही वहीं छुपा देव सड़क पर आता है और खुश होते कहता है, अरे वाह, जैसा सोचा था मैंने वही हुआ, ये आजकल की टेक्निक भी ना, जो सच्ची में बच्चों को किडनैप करते हैं उनके लिए तो कितनी मुश्किल होती होगी ना, बिल्कुल आसान नहीं है ये काम, पर अफसोस अक्षित सक्सेना, तुम दो कदम रखोगे तो मैं चार कदम उससे पहले रख लूँगा, इसे कहते हैं धूल झोंकना, सही लगा तुम्हें, यही थे हम, पर अब हम यहाँ नहीं होंगे, अब लेकर जाऊँगा मैं मेरे बेटे को नई जगह, कहते हंसते हुए देव भागकर थोड़ी दूर जाता है, जहाँ उसने छिपाकर ऑटो खड़ा किया था वहाँ पहुँचा। हाय बेटा, कहते देव ने ऑटो में झाँका। अक्षु के आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और देव ने हाथ मुँह बांधे होते हैं, सॉरी बेटा मुझे ये करना पड़ा, वरना हम पकड़े जाते, पर अब ये बांधने की कोई ज़रूरत नहीं, लो खोल दिया, अब हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि अक्षित रंजन दोनों आकर चले गए और हम उन्हें मिले भी नहीं। अक्षु अपने हाथ से जल्दी से आंसू पोंछते हुए कहता है, डैड मामू आए, मुझे उनके पास जाना है, और अक्षु ने डैड डैड चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी देव ने अक्षु को पीछे की साइड से निकालकर आगे बिठाया और मुंह पर अंगुली रखकर हिश करते हुए, चुप, बिल्कुल चुप, एक शब्द भी नहीं, और खुद भी ऑटो में बैठकर वहां से अक्षु को लेकर निकल गया। अक्षित घर पहुंचा तो सबने रंजन अक्षित से पूछा, पता चला, तो रंजन नामे सिर हिला देता है। संध्या अक्षित की ओर देखते, क्या फ़ायदा हुआ वहां जाने का। अक्षित, मुझे फ़ायदा नुकसान नहीं, मुझे सिर्फ मेरा अक्षु चाहिए, और दोनों एक दूजे की ओर देखने लगे। कुछ घंटे बाद संध्या फ़ोन को हाथ में लिए इधर उधर चली होती है, वहीं पैसों का सीढ़ियों के पास बड़ा सा बैग पड़ा होता है, बाकी सब भी वहीं बैठे थे, सबको इंतज़ार था तो देव के फ़ोन का। अक्षित अपने हाथ में बंधी वॉच की ओर देखते कहता है, दो तीन घंटे तो हो चुके हैं। रंजन जो अक्षित के पास ही सोफे पर बैठा था अक्षित के हाथ पर हाथ रखते हुए बोला, हाँ अक्षित बस करने ही वाला होगा फ़ोन। तभी संध्या फ़ोन को हथेली पर मारते हुए बोली, हमारा उसे फ़ोन करने का भी कोई फ़ायदा नहीं, बंद आ रहा है, राहुल भी वहाँ आया हुआ होता है, बहुत होशियार बन रहा है वो, जो कर रहा बहुत सोच समझ कर, ताकि उसे भी खतरा ना हो और उसका काम बन जाए, देखो उस जगह भी गए पर वो वहाँ से भी निकल गया। तभी संध्या का फ़ोन बजता है, संध्या फ़ोन की ओर देखती कहती है, अननोन नंबर। अक्षित भागकर संध्या की ओर गया और बोला, उठाओ जल्दी। संध्या ने जैसे ही फ़ोन उठाया तो देव ने संध्या को फ़ोन स्पीकर पर करने को कहा। संध्या हैरान होते फ़ोन स्पीकर पर करती है, कर दिया। तभी सबको देव के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई और फिर बोला, वाह अक्षित मानना पड़ेगा, पहुँच भी गए तुम वहाँ जहाँ मैं तुम्हारे बेटे को रखा था। अक्षित ये सुनते ही बोला, क्या। रंजन पास खड़ी नीलिमा से धीरे से बोला, इसे कैसे पता चला, इसका मतलब ये वहीं था। नीलिमा, क्या। देव, अब सब यही सोच रहे होगे ना कि मुझे कैसे पता। तो अक्षित, यार तुम डाल डाल तो मैं पत्ते पत्ते, नहीं समझे, तुम सोच भी नहीं सकते उतना मैंने उतना क्या, उसके ज़्यादा भी सोच रखा है, तो फिलहाल मुझसे उलझने भिड़ने का मत ही सोचो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कोई धमकी नहीं है, इसके लिए तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, सिर्फ 5 करोड़ ही नहीं, बहुत कुछ खो दोगे अगर ज़्यादा समझदारी दिखाते हुए मुझसे पंगे लिए तो। अब तुम अक्षित ये सोच रहे होगे ना कि तुम वहाँ गए और मुझे कैसे पता चला, सोचना ज़रा। अक्षित ये सुनकर बोला, इसका मतलब तुम वहीं थे, मेरा अक्षु वहीं था। जीजू, ओ सीट, मुझे जो लग रहा था, फील हो रहा था, वो यूं ही नहीं ना। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? मेरा बच्चा वहीं था, अपना सर पकड़ते हुए। रंजन, हाँ हमें और देखना चाहिए था। तभी देव जोर जोर से हंसते हुए बोला, कच्चे खिलाड़ी हो यार आप सब, मेरे साथ खेलोगे? चलो छोड़ो, वैसे भी अगर तुम अक्षित मुझे वहां ढूंढ भी लेते, अपने अक्षु तक पहुंच भी जाते, तो ना मुझे पकड़ पाते ना तुम्हें अक्षु मिलता। इतना आसान नहीं है, अगर कोशिश करनी है देव दीक्षित से जीतने की तो कर लो। दिया मौका, अभी मैं हूँ भरे बाजार में, दिल्ली मार्केट आओ और मुझे ढूंढ लो। नंबर से पता भी करोगे तो मार्केट ही बताएगा, पर अफसोस मुझ तक पहुंच पाओगे अपने बेटे तक नहीं। और जोर जोर से हंसने लगा।